اللہ تعالیٰ نے جو صبر اور صلات کی بار بار بات کی ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے، دیکھیں اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ یہ تو دو کام ہیں، وہ انسان کی شعور کے اندر یا انسان کی اس کے اندر پیوست ہیں.
السلام علیکم. جی جزاک اللہ عمر بھائی، بہت آپ نے اچھے طریقے سے ان آیات کو پیش کیے، اور اس میں جو خاص طور پہ دو پہلو بڑے اہم ہیں، یہ تو صبر کا اور دوسرا جو آپ نے جو خشیت کا حوالہ دیا، تو جنرلی جو صبر ہے اس کو وہ ہمارے اردو میں بھی جیسا استعمال ہوتا ہے، ایک ٹپیکل معنوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا جاتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف کسی کو برداشت کرنا جہاں پہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو وہی صبر ہے. مطلب صبر کی جو ایک عام تفہیم ہے وہ یہی بنتی ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ صبر کر لیں، جب آپ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ بہت طاقتور سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو جو صبر ہے وہ بہت اور معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو بہت وسیع ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جو بھی تکلیف ہے مصیبت آتی ہے اس پر آپ نے برداشت کرنا ہے اور اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، مطلب یہ پہلے تو اس کا ہے ہی ہے. اسی طریقے سے جو عبادت ہے، جو احکام الہی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کے اوپر آپ نے ثابت قدمی سے عمل کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے. یہ صبر کی فارم ہے، آپ نے اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ نفس تو کہے گا بھائی میں یہ کام کیوں کروں، میں یہ زکات کیوں دوں، میرے جیب سے پیسے جا رہے ہیں، میں کسی دوسرے کا فائدہ کیوں کروں بھائی. اگر آپ دیکھیں تو جو اوپر ان سے جو گفتگو کی جا رہی تھی اہل کتاب سے، اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا جو سے پچھلی والی آیا جو ہے نا کہ تم دو لوگوں کو نیکی ہوم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں سے جھکو. کیونکہ یہ جو چیز دوسروں کو تلقین کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اس کے اوپر خود عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یہ ایگزامن کر لیتے ہیں کہ ہم تو ویسے اتنا اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے کیا کسی کی اوپر پیسہ خرچنا، ہم نے تو اپنی زندگی پوری خرچ کر دی. یہ ایک جو پاپائیت کی ذہنیت ہے نا، یا جو بسم اللہیت کی ذہنیت بال کہتے ہیں، وہ اس میں بڑی کامن سی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی پرسنل لیول پہ جا کے اس کو کٹے سترا سے نہیں کرتے جس کو وہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ڈیفینیٹلی آپ کچھ لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو جو آپ کو سادگی کا درس دے رہا ہوگا، اکثر اوقات اس کی جو اپنی زندگی ہے اس میں سادگی نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ اس کی ایک عالیشان زندگی گزر رہی ہوگی، اس میں وہ کہہ دے گا کہ جی سادگی بڑی اچھی چیز ہے، اور وہ دوسروں کے لیے مطلب ایک اور حکم ہے، اپنے آپ کو کسی حکم کو اور درجے پہ سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں. جیسا اور میں نے جو عرض کیا کہ جو گناہوں سے جو بچنا ہے وہ بھی اسی کے فارم ہے صبر کی، کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیزائر آ رہی ہے، اور ڈیزائر ہر انسان میں آتی ہے، ایسا نہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کی ڈیزائر سے ختم ہو جائیں گی. یا جو صحابہ کرام تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر اپنی کوئی خواہشات نہیں تھی. اگر آپ کی خواہش ہی ختم ہو گئی اور آپ اس کو روک نہیں رہے تو پھر تو آپ انسان ہی نہیں رہے نا، مطلب آپ کے تو پرابلم ہی نہیں رہی وہ، ٹھیک ہے. تو اجر و ثواب اسی چیز کا ہے کہ آپ کو خواہش ہو اور آپ پھر بھی رکے رہیں، آپ کے پاس وہ ڈیزائر ہو اور آپ کے پاس پاور بھی ہو پھر بھی آپ رکے رہے. اگر پاور نہیں ہے تو پھر بھی آپ نہیں کر رہے تو آپ رکے تو نہیں ہوئے، وہ تو آپ کر نہیں پا رہے. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اس کے اندر جو صبر کے مفہوم میں آتی ہیں. لیکن ان سب سے جو سمجھ لیں، جس کو سمجھتا ہوں جو سب کی ماں ہے نا ان سارے چیزوں کی، وہ ایک یہ کہ جو بیسیکلی حق پر قائم رہنا مخالفت کے باوجود، یہ ہے مطلب جو اس کے اندر نا، کہ وہ مخالفت آپ کے اندر سے بھی آ سکتی ہے، وہ خارج سے بھی آ سکتی ہے، یہ چیز ہے جو صبر میں، اور یہ ہمیشہ آئے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مطلب اگر یہ اہل کتاب کی گفتگو کریں، اگر ان میں سے کوئی بندہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اپنے قبیلے والے یا جس کے جو لوگ ہیں وہ سے مخالفت کریں گے، بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم ہماری جو ایک ٹریڈیشن ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے ٹریڈیشن میں جا رہے ہو. تو اس کو بڑے سخت مخالفت آئے گی، اس کو خود مخالفت آئے گی اپنے نفس سے کہ یار میں نے اپنے زندگی کے 40 سال تو ایک سمجھ لیں عیسائی کے پادری طور پہ گزارے، میری 40 سال کی عبادتوں کا کیا بنے گا، وہ میری 40 سال کی محنت کیا بنے گا، میں غلط رہا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی ہیں، اور لیکن چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو، اگر آپ کو مزاحمت آ رہی ہے آپ نے اس مزاحمت کی مزاحمت کرنی ہے. یہ صبر کی اصل فارم ہے کہ مزاحمت آئے گی اور آپ نے مزاحمت کی مزاحمت کرنی ہے. جسے اقبال کہتا ہے نا کہ تندی بات مخالف سے نہ گھبرائے ہو کا، तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये चीज जो है, ये सबर का जो मतलब हकीकी मफहूम है ना, उसके अंदर ये चारों पहलू बड़े अहम हैं। तो मैं खशियत से जाने पे जाने से पहले मैं चाहूंगा फराज भाई भी अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहें तो।
जी बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका भी और उमर कमाल भाई आपका भी बहुत खूबसूरती से आपने बयान की आज जो चीज़ें। मैं इस पे थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बताया जो आयत करीमा है वस्तईनु बिसब्री वसलात, के उससे अल्लाह ताला कहते हैं नतीजा क्या पैदा होगा ना, जिसे हम जज कर सकते हैं कि आखिर क्या हमने सब्र और सलात कायम की है या नहीं की। वो से पिछली आयत में जो भी उमर भाई ने तलावत भी फरमाई थी कि अतामरून नासा बिल बिरि व तनसून अनफुसकुम व अंतुम तत्लून किताब अफला तअक्लून, के बेसिकली तो नेकी की बात की जा रही है, बिर की बात की जा रही है कि बिर जो है तुम लोगों को उसका हुक्म देते हो या उसकी ताकीद करते हो, उसके बारे में आगाही देते हो और अपनी नफ्स को भूल जाते हो। तो इसमें उमर भाई ने बहुत खूबसूरत वायद पेश की 177 सूरह बकरा की कि नेकी ये नहीं है या बिर ये नहीं है कि तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है, बल्कि उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स डाली गई हैं वो ईमान के साथ है, अल्लाह पे ईमान, योम आखरत पे ईमान, मलाइका पे, कुतुब पे, नबीयीन पे ईमान। और फिर आया है वह आतुल माल अला हुब्बिही, कि अब बिर शुरू हो रहा है ईमान के बाद अपने माल से, और माल किसको देना है, ज़वील क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, के उसमें इंसानों को कैटेगराइज कर दिया गया, वह इब्न सबील व साइलीन व फिर रिकाब। इसी तरह सूरह आले इमरान की आयत है 92, उसमें भी आता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, के तुम बिर की हद को नहीं पहुंच सकते या बिर के जो जो उसका कमाल है या उसका जो असर है उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज में से अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो यानी ये जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें अल्लाह ताला अमल की बात कर रहे हैं ना, कि अमल करेंगे तो होगा, वो अमल कैसे पैदा होगा, उसके लिए आया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, उसके लिए स्टेडफास्टनेस है कि आपका ईमान जो है वो पुख्ता हो, आपको पता हो, हमें पता हो कि ईमान हम किन नताइज के ऊपर लेकर आए हैं, अल्लाह ताला हमारे से दुनिया में और आखिरत में क्या तकाजे फरमाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाब ने किस तरह से ये तकाजे पूरे किए, उसके लिए अपनी जान माल घर बार सब कुछ पेश किया उन्होंने, और उसको स्टेडफास्टनेस यानी कि इस्तकामत के साथ, सब्र और इस्तकामत जो हम उर्दू में भी कहते हैं, उसका मुजाहरा किया। फिर आया वह अकीमुस्सलात, के जो इज्तमात हो रहे हैं जहाँ पे इज्तमाई इबादत हो रही है, नमाज की सूरत में इबादत हो रही है, वहां पे हमें बताया जा रहा है कि कयाम भी करना है, जैसे आया कि अब खड़े होके बताओ कि क्या बात है, अब वो खड़े होके हम अपने आप को तलावत कर रहे होते हैं कुरान पाक की आयात, या सुन रहे होते हैं जब इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है, और फिर उसमें रुकू है, उसमें सजदा है, उसमें और फैक्टर्स हैं नमाज के जो एलिमेंट्स हैं, वो सब एक मानवीय हैसियत रखते हैं, और उसमें बहुत अहम सबक मौजूद है हमारे लिए कि हमने जो एक ज़ाहरी इबादत की है, अब मुआशरे में हमने इसको अमली तौर पर कैसे कन्वर्ट करना है, मेरी जो इबादत है, मेरा जो सब्र है, अब वो बिर के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, यानी बिर जैसे अभी बात कर रहे हैं कि ऐसी ज़मीन है जो स्मूथ है, जो वसी है, और जहाँ पर लोगों को बिल्कुल एक लेवल के ऊपर सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनकी आंखों के सामने हर चीज़ मौजूद है, तो उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि ये इतनी वुसत पैदा करने के लिए तुम लोगों को तो कहते हो और अपने नफ्स को भूल जाते हो। अच्छा, इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो मैं नफ्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जैसे कुरान पाक में जो मैंने जब अंडरस्टैंडिंग कुरान की मेरी डिवेल्प होती रही, आगे चलते रहे, कुछ असातिज़ा मिले, एक जो बात मुझे बड़ी पते की समझ आई वो ये कि कुरान पाक में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, यानी अगर अल्लाह ने कहीं पे अपने लिए अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स और है, जहाँ पे अल्लाह ने खुद को रब कहा है तो वहाँ पे उसकी करेक्टरिस्टिक्स और है, मुराद एक ही ज़ात है लेकिन करेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, वहाँ पे उसकी मानियत चेंज हो रही है। तो जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आया कि अपनी जानों पे या अपने बारे में वो भूल जाते हैं, तो जो नफ्स है बेसिकली ये हमारा वो इंटरनल सिस्टम है, जिसे मतलब तसव्वुफ के अंदर भी बहुत से इसको नाम दिए जाते हैं, आम जुबान में हम इसको रूह भी कहते हैं और इंटेलेक्चुअल जुबान में हम इसको माइंड भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ये कहते हैं। तो नफ्स बेसिकली हमारा वो इंटरनल है जिससे अल्लाह ताला कहता है तुमने ग्रो करना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको नहीं भूलना, जिस्मानी ग्रोथ वो हमारी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो नफ्स की जो ग्रोथ है वो अल्लाह ताला ने बिर के साथ कनेक्ट की हुई है, और बिर में हमने देखा है कि बिर में जितना भी काम हो रहा है वो देने का काम हो रहा है, वो देने का काम हो रहा है जी, इसको दो उसको दो, यतीम को दो, मस्कीन को दो, रिश्तेदारों को दो, जो शिकंजे में फंस गया उसको दो। अब जाहिर बात है कि उस देने वाला बंदे के लिए हमें जो एफर्ट करनी पड़ेगी वो हमारा अभी मान का तकाजा है कि हमने उस एफर्ट को कितनी तेजी से करना है, कितनी जल्दी से करना है। अगर हम वाकई अल्लाह से एक ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो उसका ताल्लुक, अल्लाह का ताल्लुक ये नहीं है कि हम उसकी राह में खून बहाएं, हम उसको कोई नजराने पेश करेंगे, बल्कि उसने जो मखलूक की जिम्मेदारियां हमें दी हैं हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। वो जब जिम्मेदारियां पूरी होती हैं तो हमारी सलात भी कायम हो जाती है, हमारे नमाजी भी कायम हो जाते हैं, हमारे साथ जो खड़ा है वो भी खुशहाल होना शुरू हो जाता है, हमारे पीछे जो खड़ा है वो भी खुशहाल और वो भी सेल्फ कंटेंट होना शुरू हो जाता है, वो भी देने वाला बनना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारी सलात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। और यही शायद वो कमी है जो हमारे मुआशरे में मौजूद है कि हम लोगों को तकलीद तो कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए एक रोल मॉडल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग आते हुए घबराते हैं कि पता नहीं हम दीन की बात करेंगे तो पता नहीं हम क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से। तो तरक्की जो है उसमें अल्लाह ताला ने इंसान की जो तरक्की है वो नफ्स की तरक्की के साथ जोड़ी है, और नफ्स की तरक्की में अल्टीमेटली आपकी मादी तरक्की शामिल है कि उसमें आपने देने वाला बनना है। मादी तौर पर आप खुशहाल होंगे तो हम देने वाले होंगे, वरना तो हम मांगने वाले हैं तो उसमें हमारी तरक्की नहीं है और हमारे नफ्स की भी ग्रोथ नहीं होती उसमें। तो ये कुछ दो चीजें थी जो मैं चाह रहा था कि चले मैं भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट।
बहुत आपने अच्छा, बहुत अच्छा आपने इनलाइट किया जो अनफुसकुम को, यानी कि जो लफ्ज का इस्तेमाल है वो अनफुसकुम में नफ्स इसलिए आया है कि अल्लाह ताला जाहिर से असल में आपके बातिन की बात कर रहे हैं कि आपकी जो रूहानी दर्जा है, तुम लोग जाहिरी बातें तो करते हो लेकिन अंदर का जो अपने दर्जात हैं उस पे सोचते ही नहीं हो कि मैंने इस दर्जे को असल में शौरी तौर पे यानी हैवानी दर्जे से इंसानी दर्जे पे लेके आना है, यानी नफ्स के दर्जात है ना तरक्की के।
जी जी, मेरा ख्याल बड़ा अहम नुक्ता है ये जो उन्होंने इसके इशारा किया, क्योंकि जो नफ्स है वो हर इंसान के साथ है और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है मेरा ख्याल है कि इन जनरल लोगों के लिए भी समझने के कि अगर कोई दीन का इल्म रखने वाली शख्सियत है, कोई आलिम है, कोई मौलाना है या कोई मुफ्ती है, तो नफ्स उसके साथ भी है। तो एक्चुअली शायद लोगों के अंडरस्टैंडिंग में शायद ये चीज़ आती है कि दीन का इतना इल्म सीख लिया तो ये अमल तो करने रहा, कुछ लोग वैसे बदजन हो जाते हैं। तो भाई वो अपने नफ्स की बात, असल फंडामेंटल तो ही है वो जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा वो अपने नफ्स का हुक्म मान रहा है, तो फिर आप उसकी तरफ क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो कोई पर्सनालिटी नहीं है जो आज इसको आप देख रहे हो, रेफरेंस पॉइंट जो है वो अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद है। और ये चीज़ जो है ये एक मुसलमान के माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि कुरान मजीद जो है वही हमारा उरवतुल वुस्का है, और अगर आपको रेफरेंस पॉइंट को चाहिए तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको आप रेफरेंस पॉइंट रखें और उनके तनाजुर में उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। जब हम उनके बजाय किसी और तरफ जाते हैं तो उसमें एक ज़ाहरी सी बात है कि किसी भी इंसान के अपने नफ्स की जो है उसमें चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रेफरेंस पॉइंट है वो उसका उसकी खासियत है, उसकी खूबी ये है कि उसमें कभी भी कोई मिक्सिंग हो नहीं सकती क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से प्रोटेक्टेड है। तो जो ये चीज़ है ये बड़ी अहम है कि वो जो पूरे का पूरा जो अगर आप उसको समझें थोड़ा सा कि जो अल्लाह ताला की स्कीम है उसके अंदर अम्बिया को अल्लाह ने इसलिए मासूम करार दिया कि उनसे वही के अखज में, वही को अखज करने में, रिसीव करने में और उसको प्रोपोगेट करने में उसमें उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बाकी उसके अलावा वो हमारी तरह के इंसान है लेकिन वही के अक्स और इफादा में वो स्पेशली प्रोटेक्टेड है। क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक नुकता है, थोड़ा सा इसमें ये वजाहत करता चलूँ, क्योंकि जो सबर का हुक्म हमें भी दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में अगर आप मकाम पर देखें अल्लाह के नबी को भी दिया जा रहा होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ समझने की उनके अपने भी कुछ मतलब चाहते हैं, अपना एक इरादा है, अपना एक विस्टम है, अपना एक किसी चीज़ के बारे में आपको गुस्सा होगा, किसी चीज़ के बारे में आपको हिर्स होगी, एक आपको अपना तकवा का लेवल है, वो सब चीज़ें सारे ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अटैच हैं, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम करके दिखाया। वो पे अल्लाह ने बल्कि फरमाया कि आप जो हैं आप तो बड़े हरीस हैं मोमिनीन के बारे में कि वो उनके बारे में बड़े हरीस हैं। तो हालांकि जो हिर्स है वो पता है हम तो उसको लालच नेगेटिव कनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बंदा अपने नफ्स के ऊपर काबू पा के नफ्स मुतमाइना के लेवल पर चला जाता है तो फिर वो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो अपनी पर्सनैलिटी की उन चीज़ों को भी, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिवली उनको शेप अप करता है। तो वो उसकी जो शख्सियत है वो इस तरीके से दर्जा बदर्जा निखरती है। तो उसकी तरफ
सही
हमें
बात।
मुतवज्जो होना चाहिए। जी
ये सवाल है, सब्र क्या है, जुल्म को सहना भी सब्र है।
मेरा ख्याल है इसके बारे में थोड़ी सी इनिशियली गुफ्तगू की थी कि जुल्म को सहना जो है वो आम बोलचाल में तो कहते हैं कि सब्र है, लेकिन जो जो कुरान मजीद जिस तरफ इशारा करता है उसमें वो सब्र नहीं है। क्योंकि सब्र जो है वो सिर्फ खामोश बर्दाश्त नहीं है, वो एक मतलब एक स्पिरिचुअल फोर्स है, वो एक एक एक्टिव इंड्योरेंस है। आपको अगर किसी ने ओवर पावर कर दिया है तो आप शिकस्त उसमें एक शिकस्त खोर्दा पोजिशन में हैं, तो अगर उसके ऊपर आपके पास कुछ चारा ही नहीं है कि आप उसको बर्दाश्त करें, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करते हुए उसमें से निकलने की कोशिश कर लें किसी ना किसी फॉर्म में, ये भी सबर का हिस्सा है। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको सह रहे हैं और आप सहते चले जाएं। और दूसरी बात जो है कि जो मेरे लिए अक्सर परेशानी का बायस बनती है कि एक वो सबर है जो आपको अल्लाह के रास्ते में आता है और एक वो सबर है जो आपको इंसानों से मामले में आता है। ये दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। मतलब तो आपको अगर किसी से कोई मामला आप कर रहे हैं, इंसान से कोई बिजनेस ले लेंगे, उसमें आपके साथ कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप अल्लाह ताला के दीन की बात कर रहे हैं, उसकी खिदमत की तरफ जब मुतवज्जे हो रहे हैं, तो उसमें जो सबर आता है वो सबर बहुत डिफरेंट तरह का है। और जो इस तरफ इशारा किया जा रहा है वस्ताइन में सबरी वसला, वो उस सबर की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये वो इंसानी सबर के सतह पे बात नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करना जो है उसके लिए आपको सबर दरकार है।
पहले फराज भाई से पूछ लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। फराज भाई,
जी बहुत अच्छी मिसाल दी है उमर भाई ने भी कि सब्र जो है वो इस्तकामत के साथ जुड़ा हुआ है, और इस्तकामत जो है वो एक्शन के साथ है कि अगर हम जुल्म के ऊपर खामोश बैठ जाएं, और इसलिए तो वो हदीसे कुदसी भी है शायद जिसका मफहूम है कि सबसे जो कमज़ोर हालत है वो दिल में बुरा जानने की है बुराई को, ठीक है, तो वो सबसे कमज़ोर हालत है ईमान की ना, कि हम दिल में चुप करके बैठ जाएं, दिल में उसे बुरा जाने। और लेकिन वो एक बहुत ही वीकर वीकर सिचुएशन है, और अफजल जो है वो ये है कि हम उसके बारे में या तो बात करें या उसे लिखें या उसे हाथ से रोकें। तो अफजलियत हदीस नबी में भी आई है और कुरान पाक भी हमें इसी बात की तरफ लेकर जाता है कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, लेकिन उसको एक तरीके से बयान करता है। वो ये नहीं कहता कि फसाद पैदा हो, बल्कि अल्लाह इस्लाह की बात करता है और मुसलिहून की बात करता है। और हमें ये चीज़ समझनी है कि हमने सबसे पहले फसाद और इस्लाह का मतलब समझना है और देखना है कि मुसलिहीन में कौन सी खूबियाँ होती हैं, कौन सी खसूसियात होती हैं, और वो किस तरह से माशरे के अंदर सब्र के खिलाफ जस्तजू करते हैं। और यही नबियों की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला पेश करता है उसमें हमें यही सबक मिलता है कि वो बड़े रवादारी से इस इखलाक के साथ वो बात करते हैं, कहीं भी वो तैश या गुस्से की हालत में आके बात नहीं करते, कहीं पे किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि इनके जो इज़ा हैं उनको भी बुरा ना कहो, ठीक है, कहीं ये तुम्हारे जो सच्चा इज़ा है उसको बुरा कहें। यानी कि ये चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी कि अगर हम पे कोई जुल्म कर रहा है तो हमने उसको किस तरह से जवाब देना है। हम उसकी ज़ातियात पे ना उतरें, वो जिन अकायद का फॉलोअर है हम उसके अकीदे पे बात ना करें, बल्कि उस एक्शन के ऊपर हम बात करें और कोशिश करें कि उसकी नफ्स की भी इस्लाह हो जाए। जैसे फिरौन के मामले में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की थी कि फिरौन की तरफ भी जाओ तो उसको तज़किये की दावत दो, उसके उसको करेक्टर बिल्डिंग की दावत दो, ताकि वो अपना मुहासबा कर सके और अपने आप को बेहतर शख्स के तौर पर बना सके। और अगर वो नहीं मानता तो फिर जाहिर बात है फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो ये स्टेजेस है जो हमें देखनी है कि सबर और इस्तकामत अमल के साथ किस तरह जुड़ी है और अमल किन चीजों का मुतकाजी है। जी उमर,
जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल यही है, बात आपने पूरी कर ली है। बस बयान हर शख्स थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इसको बयान करता है, और उमर भाई ने भी जो बात की है वो भी इसके अंदर ही है। मैं इसको देखता हूँ कि जो असल में इंसान का जो अल्लाह ताला जो चाहते हैं इंसान से वो हिकमत का मेराज है। असल में अगर हम देखें ना दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने फरमाई थी, उन्होंने फरमाया था, ये सूरतुल बकरा की आयत है 129, फरमाते हैं रब्बना वबअथ फीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नक अंतल अजीज़ल हकीम। देखें जो हिकमत है, जिस तरह आपने भी बताया कि असल में सब्र जो है ना हिकमत का इंस्ट्रूमेंट है। आप अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि शौरी तौर पे इंसान पॉजिटिवली उस दर्जे पे पहुंच जाए कि वो चीज़ों को और मामलात में फसाद की तरफ ना जाए, बल्कि चीज़ों को सेटल डाउन करने वाला हो और मसाइल को हल करने वाला हो। तो ये जो कैपेसिटी है मामलात को सॉल्व करने की, उसको डेवलप करे वो चीज़ है कि वो जिधर मामला हो वो गड़बड़ करके झगड़ा करके वहाँ से भाग जाए। तो सब्र बुनियादी एलिमेंट है हिकमत का, असल में सहना नहीं है जुल्म को, आपने उससे उसको इस तरह रिटेलिएट करना है कि आप अगले बंदे को, अगर आप कमजोर हैं फर्ज किया, या आपका ताल्लुक टूटने का खतरा है, तो आपका ताल्लुक भी ना टूटे, और ये है कि अगर आप कमजोर हैं तो वो आपको तहस नहस भी ना करे, लेकिन ये है कि आपकी स्ट्राइव कंटिन्यूसली चलती रहे, और इस स्ट्राइव का नाम असल में जो है ना सब्र है। यानी सब्र का मतलब सहना नहीं है, सब्र का मतलब ये है कि आप अपने जो शौरी तौर पे अपनी हकीकत को जान के जो है ना एक कोशिश करते रहते हैं असल में, तो उस कोशिश का नाम असल में सब्र का एक तरीके से कहा जाता है। यानी ये जो उस्ताद नुमान अली खान साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि एक सब्र पाकिस्तानी सब्र है और एक कुरानी सब्र है। पाकिस्तानी सब्र यह है कि जो ज्यादती आपके साथ करता है, बेटा सब्र कर लो, अल्लाह अल्लाह उन्हें देख ले सी, ठीक है ना, हम इसी तरह समझाते हैं ना। तो उस्ताद कहते हैं कि ये सब्र नहीं है, ये तो आप जुल्म का साथ दे रहे हैं उल्टा। यानी हमने जुल्म का नहीं साथ देना, हमने जुल्म के खिलाफ जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें स्ट्राइव करना है। और यही देखें नबी पाकिस्तान की सुन्नतों को भी देखें, वो भी उसी तरीके से कह रहे हैं, यहाँ तक कि उनको हिजरत करनी पड़ी, लेकिन ये कि उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा।
मैं असल में ना इसमें ये चीज आपने जो की है ना, और पाकिस्तान में जो तसव्वुर है, तसव्वुर सब्र है, मैं इसलिए खास तौर पे जो जो कहता था मुझे मुश्किल पेश आती है, ये फर्क करना बहुत लाजिम है। देखिए मिसाल के तौर पे मेरा एक दिल चाह रहा है कि मैं एक गाड़ी लूँ बड़ी सी, लैंड क्रूजर ले लूँ, ठीक है, एक दिल की ख्वाहिश है, अब मैं उसका सब्र भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये सब्र नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके मियाँ बीवी हैं और आपकी बेगम की बेगम आपसे कहती है कि जी मैंने लड़ से कोई बहुत ईद के ऊपर तीन चार जोड़े दे रहे, प्रैक्टिकल बातों पर आ जाते थोड़ा सा, तो वो कहे कि नहीं आपको तो एक जोड़ा मिलेगा। अब वो ये जो कर रही है सब्र नहीं कर रही है कि बाकी तो मुझे दो रुपये तो नहीं मिल रहे मुझे। तो जो ये मैटर्स हैं, ये मैटर्स इंसानों के पर्सनल मैटर्स होते हैं। ये जो कुरान मजीद जिस तरफ सब्र का तवज्जा दिला रहा होता है, वो अल्लाह ताला के दीन के ऊपर अमल करना जो है, जो हक के रास्ते में आपको मुखालफत आ रही है उसके ऊपर सब्र करना, वो सब्र है, वो इंदल्ला माजूर है, उसके लिए यह है कि इनल्ला मा साबरीन। अब अल्लाह ताला आपके साथ तब सब्र में साथ नहीं है कि जब आपको 3 सूट या 1 सूट मिल गया और आप पे कोई जुल्म हो गया, मतलब ये जो मैटर्स है ना, या मैं चाहता था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और मुझे प्रमोशन नहीं मिली और मैं सब्र कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये मैटर्स को अपने माइंड में कॉन्शियस जो मुसलमान शौरी तौर पर मुसलमान होता है उसको समझना चाहिए। अदरवाइज वो कुरान मजीद उसको और तरफ बात लेके जा रहे हैं, वो और तरफ समझ रहे हैं। इसलिए जब तक मेरा मसला वो मसला नहीं है जो अल्लाह ताला जिस मसले का मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं, तब तक मुझे कुरान में समझ नहीं आएगा कि कुरान मजीद तो कुछ और बात कर रहा है। तो मैं तो खबर कर रहा हूँ इतना ज्यादा, अल्लाह से दुआएं में मांग रहा हूँ, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला जो बात फरमा रहे हैं आप उसके पूरा उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो यही कहा जा रहा था उनसे कि भाई आप हक को बातिल से मिक्स ना करें, हक को ना छुएं, आप उसको जानते हैं, आप नमाज कायम करें, ज़कात दें, और रुकू करो अक्सर रुकू करें, आप लोगों को नेकी हुक्म दे रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं ना आप, तो अलग कुरान की तलावत करते हैं आप नहीं जानते। और फिर अल्लाह फरमाया कि अब इस चीज में जब तुम इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, साहब ने कहा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऊपर से आ रही है, तो आगे अल्लाह सलूशन के तौर पर कह रहे हैं कि तुम्हें मदद चाहिए होगी सब्र की, कि मैंने अल्लाह के हुक्म पे अमल करना है, इसको कॉन्शियसली समझो, ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा हुक्म पे अमल, तो मुझे सब्र करना पड़ेगा, मेरे नफ्स से बगावत आएगी, मुझे खारिज के लोग लोगों की तरफ से, इशारों की तरफ से, जो लोग मेरे पे और जो मुतलगीन है वो कहेंगे भाई आपने क्या काम शुरू कर दिए, वो तंग करेंगे, तो आपने उसके ऊपर सब्र करना है। वो जो मुखालफत है जो अल्लाह के दीन की पैरवी में आती है उसके ऊपर जो आप मुखालफत को बर्दाश्त कर रहे हैं एक्टिवली, वो सब्र है। बाकी तो जो सब्र तो ह्यूमन लेवल पे तो चल ही रहा है, वो तो मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, मैं सब्र कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ उसको। तो मैं ये चाहता हूँ ये डिस्टिंक्शन जो है ना ये कायम रहे। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, मुझे शायद ज्यादा समझना आसान हो जाए, कि मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, उनकी उनकी सरहदें होती हैं, जोग्राफियाई हदें होती हैं, उनको बचाने के लिए हर मुल्क का फौजी जो है अपनी जान कुर्बान करता है, ठीक है। अब वो जो चीज़ है वो भी एक एक नोबल एक्ट ही है कि यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ समबडी एल्स, यू नो, फॉर द सेक ऑफ योर नेशन, तो वो एक नोबल एक्शन है, वो एक नोबल एक्ट है। लेकिन एक सब्र वो होता है, एक मतलब जंग वो होती है जो अल्लाह के दीन के फैलाने के लिए करते हैं और उसमें आप मारे जाते हैं, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है जिसको हम किताल या जिहाद जैसे कुरान मजीद से मुतवज्जे करते हैं। तो ये इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, और हमें इसलिए जो ह्यूमन लेवल पे हम हर मुल्क के फौजी का एहतराम ही करेंगे कि वो अपनी मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उसको आप रिस्पेक्ट ही पेश करेंगे, क्योंकि वो वट एवर सके, चाहे हम उस मुल्क को पसंद नहीं भी करते, लेकिन इन एनी केस वो अपने मुल्क के लिए दिफा के लिए काम कर रहे हैं।
मैंने इसको यही कहा था ना कि देखें जो सब्र है वो बर्दाश्त का इल्हामी पैमाना है। इसका मतलब यही है कि वो पर्सपेक्टिव कि जब आप अपने आप को रोकते हैं खुदा के रजा के लिए, तो उसमें लाजमी बात है आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि जो मैं मामला कर रहा हूँ वो खुदा के और रजा उसमें थी भी कि नहीं थी, यानी मैं उसके लिए कुछ कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था। तो उसमें मैं कहता हूँ कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आपका सिर्फ मकसद अपनी जात नहीं है, बल्कि उस जॉब से आपका मकसद ये है कि ये मैं अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, हलाल खिलाने के लिए करता हूँ, और ये कि इससे मैं बहुत सारी मिस्कीनों की मदद भी करता हूँ अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ फ़र्ज़ किया, और मैं कोई मैं एक तो ये है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनियर बिलेनियर बन जाऊँ, ठीक है, एक तो वो ख्वाहिशत नफ्स वाला है, और दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ कि यार मेरी बिजनेस जो है ना अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया बहुत सारे लोगों के रिज का, और इसमें मैं लोगों को हलाल रिज़ का वसीला अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, इसमें मैं कोशिश करता हूँ ताकि जो माशी लेवल है मुसलमानों का वो बेहतर हो। यानी ये आपकी नीयत भी होता है ना, तो अल्लाह ताला नीयतों का सिला ही देता है इंसान को। तो दीन मैं समझता हूँ कि दीन के मामले में दीन असल में दुनिया के अंदर ही हमारा है, कोई ये नहीं है कि वो बाहर कहीं जाके है। आपका डेली जो रूटीन होता है, जो अब जो हम बात भी कर रहे हैं आपस में ना, ये भी दीन का एक हिस्सा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसमें क्या अपनी अना का ख्याल रख रहा हूँ, अपने हसद और अपनी कीना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं अल्लाह ताला के लिए एक मामला कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि उसमें अल्लाह ताला की हिदायत का मैं ख्याल जब रख के मामला करूंगा ना, तो एक तो वो मेरी तस्कीर बनेगी। जिक्र का हम लोगों ने याद है ना तफसील की थी कि जिक्र ये है कि जब अल्लाह की हिदायत आपकी आपके मामलात का हिस्सा बन जाए तो वो असल में जिक्र बन जाता है। एक तो जिक्र यही है ना कि हम तस्बीह करते हैं अल्लाह ताला की, और क्या कहते हैं जो हमारे पास अल्लाह अकबर का वो भी है वो, लेकिन कम तर दर्जा है वो। इसका आला दर्जा ये है कि वो जो तस्कीर है वो हमारे लाइफ सर्कल के अंदर उसका हिस्सा बन जाए। तो ये है कि अब गर्मी की आपने मिसाल दी, गर्मी तो धूप तो अल्लाह ताला ने निकाली हुई ना, मैंने तो नहीं निकाली है, तो अल्लाह ताला ने जब धूप निकाली हुई है और मैंने उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है ना, या मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी फैमिली में पैदा कर लिया है जो गरीब है जो मस्कीन है ये जो मजबूर है, उसके मामले में भी मैं अगर शिकायत ना करूं अल्लाह ताला से और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि अल्लाह ताला इसमें तेरा तेरा कोई कमाल होगा, इसमें तेरी कोई ऐसा राज है, क्योंकि तू चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो मुमकिन है कि तू अगर वो किसी अमीर घर में पैदा करता तो मैं तो न नमाज थे न कुछ थे न कहा। अभी यह है कि अल्लाह तो तूने मुझे बीमारी दी है, ये तेरी नेमत है कि मैं तुझे तूने मेरे मुझे अपनी तरफ फेर लिया है, और फिर मैं उसमें स्टेड फास्ट हूँ। यानी खुदा से हर मामले में अगर आप खुदा से ताल्लुक को डिवेलप हमारा होना शुरू हो जाएगा ना, तो मैं कहता हूँ कि वो असल में इसको कहते हैं कि जो सूफी कहते हैं कि एक दर्जे पे ऊपर चला जाता है बंदा,
समूह के मनाजिर
वो जो मंजिल है उस पर आप पहुंच जाते हैं असल में। रुजू अल्लाह का जो वो एक दर्जा है ना कि आपको हर चीज में असल में वो कहते हैं ना कि आपको हर चीज में अल्लाह ताला नजर आना शुरू हो जाता है, उसकी तफसील यही है असल में कि आप हर मामले में हर अमल में जो अल्लाह जिक्र की बात कर रहे हैं ना, वो यही जिक्र है असल में कि हर मामले में सबसे पहले मैं सोचता हूँ अल्लाह ताला के इसमें क्या फैसला है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इसमें मामला था, जब सहाबा क्या रवैया अख्तियार करते थे जब ऐसा मामला करते थे। अब लाजमी बात है मुझे अपने ख्वाहिशात नफ्स को तो दबाना पड़ेगा सारे मामले में, अब जब मैं दबाऊंगा तो वो जो सबर हो रहा है मेरी तरफ से उसका सिला अल्लाह ताला मुझे आखिरत में नसीब फरमाएगा, और यही हमारे ईमान का हिस्सा है।
जी
मैं
उमर
कहता हूँ
भाई,
इसको हम
आपने जो गुफ्तगू की है ना, मैं असल में द रीजन आई वांट टू मेक दिस डिस्टिंक्शन वेरी वेरी शार्प, क्योंकि जब जवाल होता है ना तो जो इकदार होती है वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती है, जो वैल्यूज होती है ना वो जो तलब सुल हक बिल बातिल है ना वो हो जाता है, क्योंकि उन्होंने झूठी बात को हक के साथ मिला के किया होता है। मतलब अपने वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना ये तो हुक्म है, मतलब बिल वालदैन एहसाना, कहीं पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बहुत, मतलब अगर मामला देखें ना बाकियों के साथ आप अच्छा करना है जो अदल करेंगे ना आप लोगों के साथ, तो वालदे से तो एहसान करना है ठीक है, और उनको उफ तक नहीं कहना, मतलब डिटेल में उसके ऊपर हुक्म बनी इसराइल में फरमाया सूरह बनी इसराइल के अंदर, तो अब वो चीज है वो लोग कहते हैं उफ ना को बाकी सब कुछ कह लो तो अल्लाह रहम करे। तो ये जो प्रॉब्लम हमारी जनरेट हो जाती है ना, अच्छा खैर मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था, अब उसमें अगर वालिदैन हैं वो आपको किसी ऐसी चीज की तरफ बुलाते हैं, कहते हैं बेटा ढेर सारे पैसे कमाओ तुम मिलियनियर बन जाओ, वो कहे जी मैं तो अपने वालिदैन की हुक्म पे अमल करना है, वो मिलियनियर बन के उन्होंने उसका पैसा का क्या करना है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो मामला है तो वो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में वो बच्चों को, मतलब मैं जो अपने दोस्त अहबाब जिनको जानता हूँ अक्सर औकात उनको यही, मतलब एक बैक ऑफ द माइंड एक ट्रेनिंग होती थी कि बेटा यू हैव टू मेक अप योर सेल्फ अप और अपने लिए कमाओ और ये करो और वो करो, जो सोशल कॉन्शियसनेस है कि मेरी जिम्मेदारी दूसरों की तरफ है उसके तरफ भी कहते थे ज्यादा जोर से नहीं जाना आपने ना, वो भी एक वालदान की ताकीद होती थी। अब वो मसला यही है कि वो वालदान का हुक्म भी सिर्फ इसलिए माना जा रहा है कि वो एक सोशल प्रेशर है, वो इसलिए नहीं माना जा रहा कि वो बिल वालदैन ही एहसान। तो ये जो मैं जो इसलिए इसको एम्फसाइज करता हूँ, जो इकदार जब आपस में मिक्सअप हो जाती है ना तब आपको एक ऐसी काते बात करनी पड़ती है जो इन दोनों चीजों को तोड़े ताकि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ मैं वालदैन का एहतराम कर रहा हूँ लेकिन इस वजह से कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है वो एहसान है इस वजह से करना, तो तब वो चीज़ नेकी की तरफ जाएगी। लेकिन डेफिनेटली अब मेरे वालदैन हैं वो मुझसे कुछ नॉर्मल रूटीन की कोई रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो वो भी मैं उनकी पूरी करूंगा, ठीक है ना, चाहे मैं एहसान के दर्जे पे वो ना भी जाए तो मैं वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा ह्यूमन लेवल के ऊपर भी। तो ये चीज़ है जितना से ये फरमाया गया कि अगर आप किसी शिर्क की जगह पे भी जाते हैं तो आप उनको ले जाए उनकी हेल्प आउट करते हैं उस चीज़ में, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें वो मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे वालदैन ने हुक्म दिया है तो मैं उनको साथ उधर जा रहा हूँ, लेकिन एक ह्यूमन लेवल पे ताकि एक मेरा दावत का रास्ता खुला रहे उस वक्त मेरा तनाजुर या मेरा जो नुक्ता नजर है वो ही होना चाहिए। तो जब
वही
तक
वही डिस्कशन हमारी
ये जो जब तक
वही डिस्कशन
वैल्यू,
हमारी हुई थी ना इखलास की, जो इखलास की।
जी, जब तक वैल्यू का जो जो सोर्स है ना वो माइंड में डिटरमिन है क्लियर नहीं होता ना तब तक प्रॉब्लम्स जनरेट होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को अपने माइंड में थोड़ा सा फोकस करें कि जो मैं सबर कर रहा हूँ ये मैं किस चीज के लिए सबर कर रहा हूँ। अगर वाकई मेरा ये मकसद ये है कि मैं पैसे कमाऊंगा और मैंने इसमें से अपने माल में से लेट से 30%, 50%, 10% जितने भी जिस इंसान की इस्तात है वो मैंने अलग रास्ते में खर्च करना है, तो फिर तो डेफिनेटली वो उसका जो जो अमल होगा जो भी उसमें आएगा वो सब इंदल्ला माजूर होगा। लेकिन अगर वो ये चीज उसके माइंड में नहीं है, वो सिर्फ प्रमोशन फॉर द सेक ऑफ हिज सेल्फ चाहता है या कि मैं कुछ लग्जेरियस लाइफ गुजार सकूँ अपने बीवी बच्चों को एक लग्जरियस लाइफ दे सकूं, तो ये इंसानी सतह पर इसकी कदर की जा सकती है लेकिन इल्हामी सतह पर या दीनी सतह पर ये कोई काबिले सताइश चीज नहीं है क्योंकि अल्लाह ने आपको लग्जरियस लाइफ गुजारने का हुक्म नहीं दिया। ठीक है, आप एक आसानी आसानी जिंदगी गुजारें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, इसका हुक्म है कि आपके पास जो माल है आप लोगों पर खर्च करना है, वो आपने लोगों के लिए कोई रिस्क के मौके फराहम करने हैं। तो मैं इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ क्योंकि ताकि माइंड में चीज क्लियर हो और डेफिनेटली हर इंसान का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो इसको ऊपर एक्शन करने का भी लेवल होता है। कुछ लोग इसमें मैं जानता हूँ बाल अहबाब को जो अपने माल का मतलब 70% तक दे देते हैं, वो इस कैलकुलेशन में नहीं पड़ते कि हमने इतने कैलकुलेशन को अचीव करना है, 2.5% को करना है, 5% को करना है, तो वो चीज़ हर एक का तकवे का लेवल है। लेकिन ये इस चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है कि हाँ ये मैं अमल किसके लिए कर रहा हूँ और ये सब्र मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है
वही है,
जी, अगर मैंने
यही
अपने
बात मैंने भी
बच्चों,
की थी असल में ना, कि आप अगर आपका टारगेट जो है ना रजा इलाही बीच में आ जाए, इसको आसान करते हैं ना कि रजा इलाही अगर आपको मामला है, तो इसलिए मैंने कहा कि सबर बर्दाश्त का इल्हामी पे माना है। इल्हामी पे माने का मतलब है कि अल्लाह की गाइडेंस के नीचे जो मामला होगा ना वो सबर बन जाएगा। और वो लफ्ज भी मुझे वैसे याद आ गया, मार्फत कहते हैं उसको, कि आप मार्फत के दर्जे पे पहुंच जाते हैं कि आपको हर चीज और हर फैसले की, और ये दर्जात है, ये जो नफ्स मुतमैना है ना इसको मार्फत का जो आपने पहले मिसाल दी थी वो असल में अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नसीब कर देते हैं कि आप कंटिन्यूसली आप उस हालत में होते हैं कि आपसे कोई चीज़ इस तरह खारिज ना हो। तो अपना फराज भाई को थोड़ा मौका देते हैं, हमने बहुत बोल लिया इस टॉपिक पे।
नहीं, मैं माशाल्लाह सुन रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है सबर के टॉपिक के ऊपर भी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हम बात करेंगे इनका मकसद तो यही कि अल्लाह ताला कहता है कि नफ्स का तज़किया करें ना, तज़किया नफ्स हो, और जो नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, और उसके बाद नफ्स मुतमईना जो कुरान पाक में आया कि हम उसको अचीव कर सकें। और इसी को अल्लाह ताला ने कहा है कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, कि जो नफ्स की परवरिश कर रहता है, नफ्स का तज़किया कर रहता है, तो हकीकी कामयाबी तो उसी की है। और उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा एक फार्मूला हमें पेश करते हैं, सूरह रात में आयत नंबर 11 है उसकी, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नफ्स जो है उसका जब हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करते हैं तो उसकी सिर्फ मेरी ज़ात को ही नहीं उसका फ़ायदा होता, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन अल्लाह لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ جب قوموں کی حالتیں چینج ہوتی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ تغیر کا لفظ آیا ہے، اور تغیر سے مراد یہ کہ جیسے پانی اپنی شکل چینج کرتا ہے، برف بنتا ہے یا بخارات بنتے ہیں، تو وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے، وہ تغیر میں جاتا ہے، کہ قومیں بھی اپنی حالتوں میں ٹرانسفارمیشن کر سکتی ہیں، بدل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ کہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے نفس میں تغیر پیدا کریں، کہ وہ جو نفس ہمارا ہمیں ملتا ہے را فارم کے اندر، جس میں ہم اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضیاں کرنا چاہتے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ میں کنورٹ کریں، یعنی کہ میری باڈی نے تو وہی رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو وہی تھا جو باقی انسانوں کا تھا اس وقت جو موجود تھے، لیکن ان کے نفس کے اندر جو تغیر تھا وہ اتنا کمال تھا کہ انہوں نے اس نفس کے تغیر کے ساتھ اپنی قوم کی حالت بدل دی، پھر دنیا کی حالت بدلی گئی، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حالت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو انسانوں کی حالت بدلنی ہے وہ نفس کے تغیر کے ساتھ بدلے گی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی معاشی انقلاب یا ہم کوئی سیاسی انقلاب لے کر آئیں گے تو دنیا کی حالت بہتر ہوگی، بلکہ جو اسلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ انسانوں کو چینج کر کے برپا کیا، کہ انسانوں کے اندر کا جو باطن ہے وہ چینج ہو گیا، اور اس نے پھر وہ سب کچھ دنیا والوں کے لیے دے دیا، دنیا کے غریبوں کے لیے دے دیا، جو زوف کا شکار تھے لوگ، جو شکنجوں کا شکار تھے ان کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی ٹرانسفارمیشن میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں بھی ہمیں کہیں پہ نظر آتی ہو، ہم جرمنی میں رہتے ہیں یا امریکہ میں بھی رہتے ہیں، وہاں پہ بھی پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جو ہے یہ کہ دینے والے ہمیشہ موجود ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دور ہم سنتے ہیں کہ جہاں پہ دینے والے موجود ہیں دینے والے غائب ہو گئے ہیں، دینے والے ختم ہو گئے ہیں، کہ تغیر نفس جو ہے وہ اتنی بڑی چینج پیدا کرتا ہے انسان کے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بھی، اور اقوام کی دنیا کے لیے بھی، اور اقوام کی حالت کے لیے بھی، باقی ہر بندے کا جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو اس کے نفس کی اسٹیج سے اللہ تعالیٰ مانیٹر کریں گے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے، تو لیکن دنیا میں ہمارے لیے بڑا یہ کہتے ہیں کہ پیمانہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میری ذات کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں، اور وہ تبدیلی وہ وسطین بھی صبری وسلات، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فارمولا دے رہا ہے کہ اس کے کرنے کے یہ دو کام ہیں، ایک صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، ایکٹیویٹ ہو جائیں، اور جو اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، اور اس کے لیے جو اقامت صلات ہے اجتماعی جو حالت میں آپ نے جانا ہے وہ اجتماعی حالت میں آئیں، اور اپنے جو عبادت ہے اس کو مسجد کے اندر جو عبادت کر رہے ہیں اس کو معاشرے کے اندر بھی قائم کر کے دکھائیں۔ جی عمر بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟
ہاں جی، میں اس کے اندر نا کیونکہ ہم نے صبر پہ کافی گفتگو، نفس پہ بھی کی، وہ جو خشیت والا پہلو تھا نا، جو الخاشعین وہ والا پہلو صرف نظر ہو گیا، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا کیونکہ جیسا کیا کہ صبر کرنا اور یہ صلاۃ، اللہ تعالیٰ آگے سے خود فرما رہا ہے کہ اَنَّ هُوَ لَكَبِيرٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے، بے شک یہ بڑا مشکل کام، اللہ مگر الخاشعین، اور وہ خاشعین کون ہے اللہ تعالیٰ بتا ان کو بھی آگے سے ایکسپلین کر دیا، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو اگلی آیت میں آپ نے وہاں پر روک دیا تھا نا، میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، کہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور ہم اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جب بھی آپ جب آپ کا صبر کا آپ کو لگے کہ میں سب صبر کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر مجھے اللہ اجر دے گا، اور کیا میں اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رائے الہی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ پیمانہ سیٹ ہو جاتا ہے نا آپ کے مائنڈ میں، یہ کانشیس ٹریننگ کرنے پڑتی ہے مائنڈ کی، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں اس وقت میں صبر کر رہا ہوں، میں چاہے وہ ظلم سہ رہا ہوں لیکن ظلم سہنے کے اندر میں اپنا راستہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں سر زندگی مظلوم بن کے نہ رہوں، اپنے اس میں سے نکلنے کی تدابیر بھی کروں گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہم مکہ میں تھے، ظلم زیادتی تھی، وہ صبر کر کے بھی وہاں پہ بیٹھے رہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ کا دین کا یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تدبیر فرمائی، ایکشن لیا، اور اس ایکشن نے ڈرامیٹکلی ریزلٹ جنریٹ کیے، ایسا نہیں ہے مکہ میں بھی ریزلٹ جنریٹ ہو رہے تھے، لیکن اگر ہم اس کو دنیاوی سطح پر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ کی طرف ہجرت کریں، آپ نے ہجرت حبشہ کی طرف دیکھا، آپ طائف والوں میں سے میں کسے انگیج تھے، ڈفرینٹ جگہوں پہ انگیج تھے، تو وہاں پہ دو جگہ پہ راستے نکلے، تو یہ صبر کا حصہ ہے سب کچھ، کہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ایکٹیولی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پیش نظر ہے، تو اس میں آپ نے ایکٹیولی سارے کام کرنا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے کیسے عمل کر سکتا ہوں اور میں کیسے وہ معاشرہ قائم کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور یہ جو اور جو الخاشعین ہیں وہ مطلب خاشی اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل کر دیتے ہیں کہ وہ उसे अंग्रेजी में कहेंगे कि जो बड़े हम्बली सबमिसिव है, जो लोग बहुत हम्बल हैं बहुत सबमिसिव हैं। तो जो अहले किताब के अंदर अल्लाह ताला ने मतलब उनके मतलब भी गुफ्तगू आ रही है ना, और एक और जगह पर दोबारा अहले किताब के उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, आले इमरान में शायद आखिरी आयात है उसकी, तो उसमें है कि जो अहले किताब में जो ईमान लेकर आए हैं ना वो खशियत वाले हैं, उन्होंने खशियत अख्तियार की, वो अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, इसलिए वो इन जिलों में उन्होंने, क्योंकि उनका पैमाना अपनी ज़ात नहीं है ना, वो अल्लाह के सामने पहले भी अल्लाह के सामने झुके हुए थे, उनका पहले हम इंजील को अगर फॉलो कर रहे थे या तौरात को फॉलो कर रहे थे तो अल्लाह के सामने झुके हुए थे, अब जब कुरान मजीद आ गया अब हम अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, तो उनके लिए वो सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि 40 साल की ज़िंदगी जी थी वो किस तरफ जा रही है और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी आ गए हैं हमने इनको पैरवी करनी है, उनके पहले भी वो अल्लाह के झुके थे, अब उनको पता चल गया ये किताब एक नाजिल हुई है ये भी अल्लाह की तरफ से आई है और हमने इसको फॉलो करना है और ये उसकी तस्दीक कर रही है जो पहले अम्बिया ने हमें बताया था। तो ये जो अल्लाह के आगे झुकने वाला अमल है ये यही तो ईमान की हकीकत है।
हमारे पास सवाल और आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अब हम जवाब नहीं देंगे इस वक्त, क्योंकि ये सवाल जो है ना काफी मांगेंगे हमसे और हमारा टाइम खत्म हो चुका है। एक सवाल है कि अल्लाह ताला जमीन तो अगले सेशन में देंगे जवाब, जुल्म को क्यों नहीं रोकता, जंगें और नाइंसाफियां क्यों नहीं खत्म होती, क्या ये इस बात की दलील नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल आप नोट करें, कह रहे हैं कि क्या यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान इस बारे क्या कहता है। इसको इंशाल्लाह अगले सेशन में जो हमारा होगा उसमें हम तफसील इस पर डिस्कशन करेंगे, कम से कम एक सवाल को हम करेंगे, मुझे लगता है कि इसमें हमारा काफी टाइम लगेगा दोनों सवालात में। और
मान लेना मुख्तसरन आप अफराद भाई एक जुमला बोल दें, आप बोल दें, मैं बोल दूं, तो सेशन ताकि जिसने सवाल किया वो तृष्णा ना रह जाए, बाकी
सवाल पहुंच जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि मेरे लगता है यही हमें आधे घंटा मजीद लग जाएगा, हम पहले ही टाइम से ऊपर हैं।
जी जी ठीक है, ठीक है।
ये अगले सेशन में इसको कुरान से ना ये दोनों चीजें, क्योंकि ये ऐसे सवाल आते हैं जो कि बार बार आते हैं, और उसको हम कोशिश करेंगे कि हम खुद भी इसको पहले समझें और जो कुरानिक पर्सपेक्टिव है इन दोनों चीज़ों के बारे में हम वाजे करें, क्योंकि जो शिद्दत पसंद तबका है, ठीक है ना, मेरा ख्याल यही है कि ये इन दोनों मामलात में एक तो लाजिम बात है मुलिदीन का सवाल है एक वाला, और एक ये है कि अपना जो शिद्दत पसंद तबका है वो किस तरीके से मिस इंटरप्रेट करता है कुरान को असल में, और हम देखेंगे क्या क्या इंशाल्लाह इसका जवाब है। सारे साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ख़ासकर जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी राय दी, अपना उमर भाई, फराज भाई, इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कुरान को हमारी जिंदगियों में अमली तौर पे लेके आए और हमें इसकी समझ अता फरमाए और हमारी रूह का असल में ये हिस्सा बन जाए, जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले हम खुद अमल करने वाले बने, और ये जो तस्कीर है ये हमारी कम्युनिटी के अंदर खैर लेके आए, और जो लोग कुरान पे डिस्कस करना चाहते हैं उनके लिए ये वसीला बने इंशाल्लाह, और हमारे घरों में जो है ना कुरान की तस्कीर अल्लाह ताला लेके आए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत शुक्रिया अमर भाई आपका भी।